Asya yapmış ağzıma bu dostu beni sıkıntılar. Kanlar bükeyi kavranın bunların bile. Angaşyamilim çatabhirapito mande kutende varam. Jardanja gudaro çisang vidadhatana pattam varasya siya. Bindaranya nivasinam hridila saddhama bhamudharam. Radha sanyurushito jelahyam भक्त्या विहिना परादलस्यैक्षित्वाश्चुकामादितरं मध्ये कृपामयं त्वां शरणं प्रपन्ना बिन्दे नमस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय अन्तरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नं पाणिं मानं दक्षिणं कृपां बुधिरिजा परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदा मह्यं ददाति सतदा यं प्रव्रजं तमनुचेतं प्रीतकृत्यं द्वैपायनोदिरहकार्तव्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुक्तं सर्वभूतरिदं आज वो दस मूल का कौन सा विभिन्नांश विभिन्नांश जीव बद्ध माया से बद्ध जीव और माया से मुक्त जीव दो प्रकार के जीव बतलाइए मैं रसोई लकड़ी ले आया बन से गीली लकड़ी थी बड़ी मुश्किल से कहीं से लकड़ी ले आया गीली और आग पर उसे सुखा दिया किंतु आग भी बुझ गई बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई फिर कुछ दिनों के बाद में उसे लकड़ी को जलाया और उसके बाद में धीरे धीरे एक बर्तन रखा और बर्तन में पानी डाल दिया पानी गर्म ही नहीं होता था पूछा जी क्या खाया तो कह दो जी चावल दाल तरकारी लड्डू फेड़े बर्फी खाए ऐसे बोलो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जीव तत्व को यहाँ पर संक्षेप में इतने आदमी हैं थोड़े थोड़े बोले पांच पांच मिनट सार उसकी बात जीव कहाँ से उद्गम इसको आप लोग कहें मूल संकर्षण से जीव तत्व उत्पन्न होता है वो मुक्त जीव होते हैं कृष्ण की सेवा में नित्य नियुक्त रहते हैं महासंकर्षण से उत्पन्न होते हैं वो नारायण की और नारायण के समान समस्त अवतारों की सेवा करते किंतु ये शास्त्र में बतलाया गया कि भाई सुनो तटस्था शक्ति से ही उत्पन्न हुआ तटस्था शक्ति के मूल कौन है अधिष्ठात्री देवता मूल संकर्षण बलदेव जी हैं इसलिए सब समय ये रहना चाहिए तटस्था शक्ति से ही उत्पन्न है और भगवान की नित्य सेवा में रहने पर भी उसका स्वभाव तटस्थ ही रहता है चाहे मुक्त हो जाए कृष्ण की सेवा में भी रहे वो तटस्थ रहेगा उसका अंश माने वो स्वरूप अणु ही रहेगा बद्ध होने पर भी स्वरूप उसका बड़ा नहीं होगा किंतु कृष्ण के चरणाश्रय करने से उसका धर्म पूर्ण रहेगा इस चीज को सब अच्छी तरह समझना चाहिए और उनके अंश कर्णाधिशायी विष्णु या कारणवारी पर शयन करते हैं वहां से उनके रूप लोमकूप में असंख्य जीव प्रकाशित रहते हैं वहां से प्रकटित होते हैं यदि कहो जी वहां से निर्मित होते हैं तो गलत हो जाए ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन जीव सनातन है वो कहीं से भी कभी भी उसके स्वरूप का निर्माण नहीं होता है। इस चीज को अच्छी तरह से बद्ध जीव नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसको शाखा चंद्र ने उदाहरण दे करके इस चीज को समझाया गया तटस्था शक्ति से। बलदेव प्रभु इस तटस्था शक्ति के मूल जीव रूपी बीजों की खेती करते हैं, इसलिए संकर्षण है, हल और मुसल उनके साथ में, इसलिए तीन जगहों से हुआ। इसमें जो इस जगत में जो जीव हैं, ये लोग कर्णाधिशायी विष्णु के लोम कुब से प्रकटित हैं, निर्मित नहीं। क्यों इस जगत में आए? स्वतंत्र, उस जगत में भी स्वतंत्र हैं, यहाँ पर भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसलिए जीव में भी भगवान का अंशी गुण उसमें रहता है, इसलिए ये भी स्वतंत्र हैं, किंतु स्वतंत्र हैं। कैसे सुख देंगे कृष्ण को? अनुगत हैं किंतु स्वतंत्र हैं। जैसे देखिए, कोर्ट का प्रत्येक कर्मचारी परतंत्र है, किंतु सेवा करने के लिए, जजमेंट देने के लिए या और काम करने के लिए ये सब स्वतंत्र हैं। यदि वो नियम के विरुद्ध करते हैं तो उनको दंड देना दिया गया, और यदि नियम के अंतर्गत अच्छी तरह से करते हैं पुरस्कार पाएंगे। भगवान स्वतंत्र है, इसलिए जीव स्वतंत्र है, और अपने स्वतंत्रता का सद्व्यवहार असद्व्यवहार पर भगवान कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए जीव स्वतंत्रता का व्यवहार करके माया में मुग्ध होकर के इधर है, और कोई स्वतंत्रता का सद्व्यवहार करके भगवत सेवा में चला जाता है। जो भगवत सेवा में जाते हैं वो नित्य मुक्त हैं, और जो माया में आते हैं उनको अनादि सब प्रकार से विचार करके शास्त्रकारों ने, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको स्थिर किया। कोई कहते हैं कि ये भगवान का अंश है, इन लोगों ने अंश नहीं माना, इन लोगों ने शक्ति का विभिन्न का परिणति माना, शक्ति का परिणाम ना, और अंश माना तो उस रूप में माना भगवान अपनी अघटन घटन पटी ऐसी शक्ति के द्वारा केवल मात्र चित शक्ति को ही, तटस्था शक्ति को ही, जीव शक्ति को ही लेकर, और जब उनसे जो अंश होता है, नहीं तो जीवों में गुण नहीं हो सकते थे सब, शक्ति का रूपांतरित और भगवान का अंश, ये दोनों का मिल करके तब जीव में भगवान के गुण 50-50 रूप अनुरूप में होते हैं, इसलिए जीव नित्य है, सनातन है, किंतु स्वतंत्रता का व्यवहार अपव्यवहार के कारण वो माया में बद्ध है अथवा माया से मुक्त है। इसलिए कि कागज का टुकड़ा जब होगा तो कागज में जो गुण है उसमें रहेंगे, पानी का जो टुकड़ा है समुद्र में परिपूर्ण रूप से है, किंतु उसका थोड़ा सा बिंदु जो है उसमें तरलता, नमकीन और जो आग को बुझाने का गुण और सब में रहे, किंतु अनुरूप है। किंतु ये सब उदाहरण जितने हैं, कभी भी भगवान के ऊपर में, जीवों के ऊपर में ये सब पूर्ण रूप से नहीं होंगे, प्रयोज्य नहीं हो सकते। आंशिक रूप में, शाखा रूप में बद्ध जीवों को समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। विशेष रूप से हम लोग कल कहेंगे, क्योंकि ये समय और भी आप लोग की अच्छी तरह से टू डी पॉइंट उत्तर लेंगे। यदि 5 मिनट कहना होगा तो 5 मिनट में ही अपने वक्तव्य को समाप्त करें, 2 मिनट होगा तो 1 मिनट में होगा तो संक्षेप में और करें, विस्तृत में बोलना होगा तो विस्तृत में। कल अच्छी तरह से सब और समझ करके बुझ करके आए, जीव तत्व तो बड़ा गहन है। बृहत भगवतम होते हैं। 5:30 बजे हम सोच रहे थे जो खत्म कर हो गया ना, तो और 5 मिनट बढ़ा देंगे, नहीं तो उधर में रात हो जाती है, अंधकार, रास्ता गीला,
कीचड़।
14 जनवरी से होगा। हमारा भारतीय संस्कृति की गणना से संक्रांति पर सूर्य जब पार करके इधर आ जाते हैं तब मालूम होगा। ये तो इंग्लैंड की गणना से है ना, ग्रीनविच कहते हैं जिसको, ग्रीनविच के समय से ये सब गणना है। इसलिए आज के दिन में सबसे लास्ट बड़ी रात और सबसे छोटा लास्ट डेट होगा। किंतु हमारे भारतीय गणना से भूमध्य सागर के ऊपर में काशी वाराणसी से लेने से तब वो ठीक रूप में 14 जनवरी को संक्रांति पर सूर्य आते हैं और उसमें स्पष्ट मालूम होने लगता है कि आज संक्रांति होकर के सूर्य अब दिन अब बड़ा होने लग गया, खरे खरे 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बड़ा। किंतु ठंड रहेगी, क्यों ठंड क्यों रहती, उसी समय और चिलचिलाती हुई ठंड पड़ती, क्यों, क्योंकि वो लास्ट बिंदु पर गए हैं ना, तो अभी तक उसकी गर्मी थी कुछ, किंतु जब लास्ट पॉइंट से पहुंच करके जब आते हैं तो गर्मी एकदम खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो जब उसको पार करके संक्रांति से और 40 दिन का चिल्ला जब पार होता है तब जाकर के वो ठंड कुछ कम। इसलिए संक्रांति के बाद 40 दिन और भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 40 कब से, पौष मास की संक्रांति होती है ना, उसी को कहते हैं संक्रांति, मकर संक्रांति। नहीं नहीं के दिन वो तो है ही है, और उस दिन हम लोगों ने जतपाद पांशु बहुजन्म कृच्छतो इस श्लोक का हमने व्याख्या की थी, ये हो गया है, जिसमें बतलाया था धृतात्मभिर जोगी भी अपलब्ध स एव जद दृग्विषय स्वयं स्थित किं वर्ण्यते दृष्ट महो ब्रज उपशा। ब्रज ब्रज के जो लड़के हैं वो बालक या वहाँ के रहने वाले जो जीव मात्र हैं, वहाँ के रहने वाले, उनका सौभाग्य कौन वर्णन कर सकता है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। मैं इसमें ये कह रहे हैं मैं क्या वर्णन करूंगा, हम लोगों के मूल जो गुरु हैं ब्रह्मा, शंकर महेश हैं, सनक सनंदन सनातन है, यही लोग नहीं वर्णन कर, ये कवि लोग हैं, ये नहीं वर्णन कर सकते, तो मैं क्या। और केवल 7 दिन का समय, 7 दिन में 5 दिन हो गया है कि 6 दिन, और केवल अब 1 दिन की 2 दिन बाकी, मैं कितना वर्णन करूंगा। एक लीला भी यदि वर्णन करने लग जाऊं तो बस खत्म। इसलिए संक्षेप में बतलाया यदि 7 दिन में यदि ये भूमिका बांधते सुखदेव गोस्वामी तो 7 दिन में तो उनकी भूमिका भी नहीं बनती, तो वो कहते क्या। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे विचारों को बैठाया गया, नहीं तो और लोग भूमिका बांधने लगते और कथा आरंभ ही नहीं हो पाती, और परीक्षित उनका परीक्षित महाराज जी वैसे बैठे रह जाते और होता नहीं कुछ। इसलिए सुखदेव उन्होंने व्यास जी ने नारद जी ने और वहां पर नारद जी व्यास जी के पिताजी पराशर सब आए थे और सब लोगों ने मिलकर के विचार किया भाई इसके लिए ऐसा काबिल आदमी चाहिए जो सार मितं च सारं च वो ऐसा बतला सके। 7 दिन में पूरी भागवत की कथा को, नहीं तो ये तो 7,000 वर्षों में भी नहीं होगी। इसलिए इसको जो मुख्य वर्णन के विषय हैं इन सबको कुछ कह सके और सुरीला कंठ हो, कर्कश न हो, खूब सुरीला हो और तेज आवाज हो, और उसमें उसकी बातों में रस हो। एक आदमी कहा जाए वह चला गया ना? एक आदमी ने कहा और कुछ दूसरे रूप में उसको वह चला गया। एक आदमी वह चला गया, बतलाओ तो किस में रस है? एक ही बात कहने में बहुत प्रकार की भी बातें हो सकती हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे सुंदर रूप में यह बतलाएगा मीठी आवाज से तत्व को, और बड़े सरस भावना से वो बतलाया। इसलिए इसको बैठा उन्होंने 7 दिन के अंदर में द्वादश श्लोक, द्वादश संद श्रीमद्भागवत की पूरी कथा अब बड़े सुंदर ढंग से ऐसे कह दिया। ये सब लोग किताब थे, कोई भी उस सभा में जो थे कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी कितने तक कोई प्रश्न नहीं कर सका। प्रश्न के करने के पहले परीक्षित महाराज जी से प्रश्न करवा देते, वो कर लेते और नहीं कर। इसलिए कहते हैं कि ये सब लोग जब वर्णन नहीं कर सकते तो मैं क्या वर्णन करूंगा। किम वर्ण्य थे दिष्टम हो, बड़े आश्चर्य की बात है। तो इन सखाओं की तो बात क्या कहें, सखाओं की बात है जो उनके साथ में खेल रहे हैं, लोट रहे हैं अपने। कृष्ण ने उनके कंधों पर और ब्रह्म साक्षात जो योगी लोग जिनका ध्यान नहीं कर पाते उनके कंधों पर हाथ रख दिया। खा रहे हैं, खिला रहे हैं, कितने तरह से ये कर रहे हैं। इनके भाग्य की महिमा मैं वर्णन कर सकता हूं। इसलिए जद पाद पांशु, जहां पर कि कृष्ण के चरणों की धूलि उछल करके नीचे गिर गई हो, अथवा श्री कृष्ण के चरणों में लग करके नीचे दब गई हो, उस पर चिन्ह आ गए हो, अथवा उड़ करके कदम्ब इत्यादि के पेड़ों पर चारों तरफ वातावरण में छा रही हो, वो सब प्रकार की धूलियां, विशेष करके कृष्ण के मुखारवंद में पड़ी हुई जो धूलियां हैं उड़ करके, जो उनके गंड प्रदेश में लगी हुई और मैया यशोदा ने न्योछावर करते हुए आरती करती हुई अपने अंचल से उसे पोंछ करके अपने उसमें रख लेती हैं, अंचल में रख लेती हैं, अथवा कृष्ण स्वयं अपने हाथों से उन धूलियों को क्या करते हैं, गोपियों के मुखारविंद से नित्य करते हुए उनसे पोंछ लेते हैं और अपने सिर पर चारों तरफ लगा लेते हैं। मतलब इन सब धूलियों की महिमा क्या कहा जाए, कौन वर्णन थे? इसलिए सनातन गोस्वामी कौन वर्णन कर सकता है। सनातन गोस्वामी के हृदय में आनंद एकदम भरता है, जैसे जैसे मंथन करते जाते हैं उतना ही सुंदर मीठी मलाई निकलती जा रही है और भीतर ही भीतर में आस्वादन करते हुए गदगद हो रहे हैं। इतने में बाल और भाव आया, कहते हैं क्वचित पल्लव कल्पेशु, ये भी कल कहा था शायद हो गया था, क्वचित पल्लव कल्पेशु निजुद्ध समकर्षित वृक्ष मूलाश्रयम शेते गोपोत्सव उपवरहण। कृष्ण किसी के युद्ध में थक कर क्लांत हो जाते और ये प्रेम से भरकर स्नेह से आर्द्र होकर कृष्ण की कैसे सेवा करें। कृष्ण अपने पैरों को फैला देते हैं ना? एक सखा उनको अपनी गोदी में ले लेता है और एक कृष्ण का सिर अपने गोदी में रख लेता है, दूसरे क्या करते हैं पल्लव के गुच्छे लेकर और उसमें फूल इत्यादि लगा रहते हैं उसे ये कहते हैं। लाखों सेवक वो सखा लाखों पुष्प सैया रचना करते हैं और कृष्ण के अजाने में ही जोग माया कृष्ण को लाखों रूपों में बनाकर और उनकी सेवा को ग्रहण कराने लगती है। कृष्ण जानते नहीं हैं कि मैं वहां भी हूं वहां भी हूं, नहीं तो कोटि कोटि सखा कृष्ण के चरणों को जब संवाहन करने के लिए आएंगे तो ये कह सकते आपाधापी मच जाएगी, बड़ा भारी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए जोग माया ने इसका बड़ी सुंदर रूप से निभा दिया, जब कहीं भी कोई संघर्ष और ये सब ना हो, नहीं तो संघर्ष लग जाता है। किसी को जानने नहीं दिया और कार्य करा दिया। इसलिए कहते हैं, कल इसको भी हमने बतला दिया था, वृक्ष के मूल के आश्रय में, अर्थात तो कदम्ब का वृक्ष हो या कोई भी वृक्ष हो, उसके मूल में कृष्ण बैठ गए, सुशीतल छाया है और सखा लोग घेर करके और सब सेवा करने लग गए। ओहो इन गोपोत संग उपबरहण, तकिया बना लिया अपने जंघे को और कृष्ण को सुला दिया। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, लेटे हुए क्या कर रहे हैं, इसको आगे बतलाएंगे। पाद संवाहनम चक्र केचित तस्य महात्मना अपरे हत पाप मामनो व्यजने समबीजय। पाद संवाहनम चक्र, बड़े प्रेम के साथ में संवाहन करने केचित तस्य महात्मना, ये लोग महात्मा हैं, महान इनकी आत्माएं हैं, कृष्ण के समतल समान, कृष्ण से कम नहीं, तब उनके सखा हुए हैं। स्व माने समान, खामन यहां पर आस्वादन करना, खाना ना आस्वादन, इस तरह से संभाव से नहीं होने से आस्वादन नहीं हो सकता, इसलिए बतला गया देवम न देवम देवम अर्चे, देवम भूत्वा देवम अर्चे। इसलिए कृष्ण के समान होकर के आप उनकी पाद उनका पाद सेवन कर रहे हैं, महात्मा है। अथवा कहा सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, टीका पढ़ने से भी अच्छा रहेगा, महात्मा ने लगाया कृष्ण के लिए, दोनों में ही लगे, या तो विशेषण के रूप में सखाओं का विशेषण महात्मा, अथवा कृष्ण के लिए भी विशेषण लगाएगा क्योंकि महात्मा, महात्मा जो कृष्ण है उनके पाद संवाहन किए। क्यों कि महान ऐश्वर्य यहां पर दिख रहा है, जोग माया लाखों कृष्ण, ये कह रहे हैं समस्त सखा केचित, कोई सखाओं का जूत, एक जूत में कितने सखा, लाखों करोड़ों सखा, और ये सब महान कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, अपरे हत पाप मानो व्यजनी समझ, कुछ लोग विजन कर रहे हैं, चमर नहीं, नौ पल्लव कुसुमों का बना दिया, मोर पंख उसमें लगा लिए, सुंदर रूप से विजन कर रहे हैं बड़े प्रेम से। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं इस रूप से मल्ल क्रीड़ा पल्लव सैया और उपाधान, अपने जंघों का उपाधान बनाकर जो कृष्ण की सेवा की, ऐसा तो किसी का सौभाग्य ही नहीं देखा जाता, बस देखा जाएगा दो का, ब्रज के मैया पिता, ब्रज के जितने भी माता पिता हैं और इन सखाओं का, गोपियां का तो अभी छोड़ दो, अभी आगे वर्णन करेंगे, इन सखाओं जैसा सौभाग्य किसी का नहीं। यहां पर साहजिक परम स्नेह को बतला, साहजिक स्नेह से नरलीला भाव कृष्ण के पद संवाहन इत्यादि कार्यों को कर रहे हैं। कृष्ण का यदि थोड़ा सा भी अल्पमात्र भी परिश्रम देखा इनसे रहा नहीं जाता। राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदो निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्षा उतोंग सौहृद विशेष प्रसाद प्रगल्भां देवी गुणई सुललितां ललितां नमा। समस्त गुणों की आगार ललिता देवी के चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूं। क्यों, राधा कृष्ण के चरण कमलों की, राधा मुकुंद पद संभव धर्म, यदि एक बिंदु पसीना कहीं आ गया तो लख कोटि शरीर धारण कर और उनकी सेवा करने के लिए अपने को न्यौछावर कर देती है, कैसे इनकी सेवा करें, इनको श्रम दूर हो जाए। ऐसे ये सब सखा लोग कृष्ण का देखा जे थोड़ा सा कृष्ण को श्रम हुआ, किसमें मल्ल युद्ध में गोचारण में या उन सखाओं के साथ में दाव कुश्ती मल्ल युद्ध ये सब करने में, बस सखा सब स्नेह के साथ में लग गए उनकी सेवा करने के लिए। अर्जुन, अर्जुन को देखो, उनके रथ में बैठे हुए हैं और घोड़ों की बागडोर हांकते हांकते क्लांत हो गए भीष्म के बाणों से, एकदम पैने बाणों से छिद्र हो। अर्जुन कहेंगे ये भाई अब रथ छोड़ दो, अब आप हट जाइए, भीष्म पितामह इत्यादि को तो नहीं भी कोई कष्ट नहीं, विरोचित भाव से अर्जुन भी लड़ रहे हैं और वो लोग भी मार रहे हैं और कृष्ण को लग रहा, किंतु इन लोगों को तनिक भी कुछ ऐसा, सखाओं का ऐसा होगा, कृष्ण के अंगों में कहीं भी कुछ लग गया प्राण कोटि से अत्यंत मर्माहत हो जाए ना? इसलिए कह रहे हैं उनका श्रम दूर करने के लिए मानो कोटि कोटि प्राणों से भी वो व्यग्र हो गए। कैसे वो विवश हो जाते हैं वो बतला रहे हैं, पाद संवाहनम चक्रु, तखन कोई कोई महात्मना केचित महात्मना, यहां पर महात्मना सखा का विशेषण बनाया, तब इसका अर्थ कर रहे हैं, उनके पाद संवाहन को करने लगे, अथवा महात्मा माने जिनकी आत्मा
महान
है, वो महान आत्मा कब होगी, महान से महान हुआ ना, कब होगी, जब कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकता है तभी महान होगी, नहीं तो महान नहीं होगी, तभी वो महात्मा यथार्थ हो सकता है। अतः महात्मा शब्द कृष्ण के लिए यहां पर यदि विशेषण करते हैं तो अर्थ होगा वे अपरिछिन्न हो करके भी, कृष्ण अपरिछिन्न है, षडैश्वर्य पूर्ण है, आत्मा राम है, आप्त काम है, फिर भी इनके अंदर में उनकी सेवा ग्रहण करने की लालसा बन जाती है और इसीलिए वो क्या करते हैं, गोपाल बालकों की पुष्प रचित जो सज्जा है उस पर शयन कर जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, उनको कोई श्रम ही नहीं, कभी इतना विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करने पर उनको श्रम नहीं होता है, तो कंस के साथ में युद्ध करने में उनको श्रम नहीं हुआ, हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करने में उनको श्रम नहीं हुआ, रावण के साथ में युद्ध करने में श्रम नहीं हुआ, और आज इनको थोड़े से बच्चों के साथ में थोड़ा सा मल्ल युद्ध कर लिया तो इनको श्रम हो गया, गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक इतने भारी को उठाने में भी श्रम नहीं रहा, इसलिए कहते हैं अनुग्रह करके, ये महात्मा है ना, क्यों महात्मा, उनकी थोड़ी सी सेवा की भावना देकर के ही द्रवित हो जाते हैं, वो हमारी सेवा करने के लिए ऐसी तीव्र आकांक्षा इन लोगों में, दौड़ करके आ रहे हैं हमारी सेवा करने के लिए, इसे द्रवित होकर के ये परब्रह्म होते हुए भी कोई भी इच्छा नहीं रहने पर भी आप काम होने पर भी शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं बेचारे, सो माने अभी नींद नहीं, ऐसे ही पैर को फैला दिया, किस लिए, अच्छा सेवा कर लो तुम्हारी इच्छा है तो। कोई कोई गोपालक उनका पास संवाहन करने लगता है, कोई अंग मर्दन करता है, अंग माने हाथों को, कोई यहां दबा रहा है, कोई पीठ दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी बच्चे लग गए, कोई नौ पल्लवित व्यजने व्यजन के द्वारा समबीजन बीजन करने लग गए, इस प्रकार से बहुत गोपालक बहुत सी सेवा के लिए लाखों थे, लाखों को किसी को एक बाकी नहीं रखा, सबको लगा दिया, ये भगवान का महात्मा है, ये महात्मा है, महात्मा माने क्या, यहाँ पर महात्मा माने महिमा, महिमा माने षडैश्वर्य, षड्य और सज्ज मधुर लीला में भी षडैश्वर्य प्रकाश कर देना, ये महात्मा है कृष्ण का है, वहां पर महिमा नहीं होनी चाहिए, नरबालक लीलावत लीला चल रही है, किंतु उनकी महिमा ऐसी हुई कोई भी बालक नहीं समझ सका कि उन्होंने 2 रूप धारण किए और लाखों रूप धारण करके समस्त बालकों की इच्छाओं को उन्होंने पूर्ण कर दिया। अच्छा, अथवा कभी कोई चरण कोई अंग कोई किसी सेवा में नियुक्त हो रहे हैं। इसके द्वारा बाल लीला के मध्य में भी परम असमूर्ध ऐश्वर्य लीला का प्रकट होता है। ये कृष्ण का महिमा है, अर्थात कृष्ण महात्मा है। और किसी को समझने दे नहीं दे रहे हैं, नर्वत लीला भी कर रहे हैं और बच्चे बड़े प्रेम से ऐसा। यदि उस समय कृष्ण इस लीला को दिखला देते जब मैं ऐसा स्वर्गशाली हूँ, इतना रूप धारण कर सकता हूँ, आश्चर्यचकित होकर के चुपचाप हाथ जोड़ करके सब वंदना करने लगे, वो सेवा होती नहीं। इसलिए कृष्ण महात्मा है। ओ करके भी दान दे करके लाखों कोटि रुपये दे दिए और नहीं समझने दिया कि मैंने दिया, ये तो दान की महिमा है ना। नहीं तो कह दिया पहले ही से, सब जगह अनाउंस कर दिया मैं उनको आज दान दूंगा, और कहा करके दान दिया। और उसे बार बार कहते हैं कि मैंने तुमको दान दिया समझा, बस हो गया खत्म, ये महिमा नहीं। कृष्ण ने सुदामा को जैसे दिया और सुदामा को भी नहीं समझने दिया, उनकी स्त्री को भी नहीं समझने दिया और जगत में किसी को भी नहीं समझने दिया, ऐसा दान हो तो इसकी महिमा है। कृष्ण इतना बड़ा भारी दान सेवा दे करके जो योगियों को बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को नहीं देते, और इन सखाओं को अपना प्यारा समझ करके अपना सर्वस्व दे रहे हैं ना? इसलिए महात्मा क्यों, इसी श्लोक के आगे आएगा कृष्ण चेष्टितः। कृष्ण ने चेष्टा किया, क्या ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया जो सब लोगों को चांस दे दिया, जैसे रासलीला में उन्होंने सब गोपियों को चांस दिया, गोपाल बालक की ब्रह्महरण लीला में समस्त गोपियों और गायों को लाखों बन करके सुजोग दिया और किसी को समझने नहीं दिया, ये महात्मा। इसलिए उनका विशेषण अधिक उपयुक्त हुआ। वह दुस्तर्क अचिंत शक्ति संपन्न ये कृष्ण है, किंतु प्रिय सखाओं को तोह नहीं लेने देते। तोह माने क्या, गंध तक भी नहीं लेने देते। तो मैंने खबर नहीं लेने देते, तो लेना उसके पीछे पीछे ये देखो ये क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं होने देते। गोपियों को तो नहीं लेने दिया, जो कृष्ण उनके पीछे पीछे डोल रहे हैं उनकी बातों को सुनने के लिए और उनकी चरण धुनी को सिर पर ग्रहण करने। कृष्ण इसीलिए तो जा रहे, गोपियां कैसे प्रेम में लटपटी हुई कथा कथाएं कहेंगी, मुझको कैसी भली बुरी जली कटी सुनाएंगी, जरा सुनो तो, सामने तो बोलेंगी नहीं तो जरा सुन लो, इसलिए ऐसी कथाओं को सुना रहे हैं। इसीलिए ऐसा कर यहां पर कह रहे हैं कि नंदनंदन के किसी रूप का व्यतिक्रम नहीं हुआ। जब ब्रह्मा मोहन में कृष्ण बने और गोप ग्वाल बन गए ना, और बछड़े बन गए, रूप दूसरा धर लिया ना, और यहां पर कृष्ण क्या करें, प्रत्येक गोपों को उसी रूप में नंदनंदन के रूप में ही, उनके सखा के रूप में ही उनको ये सेवा उनकी ग्रहण कर रहे हैं, उनसे भी उनकी दया उनके ऊपर, उन गायों से भी और उन माताओं से भी, कितनी दया इन पर कर रहे हैं। इस तरह से पाद संवाहनम चक्रु, कितना भाव इसमें ले आए, असंख्य गोप बालकों की वहां पर महाजूथ सब था, एक दू जैसे गोपियों का जूथ होता है ना, एक एक जूथेश्वरी होती है, इसी तरह से ये सब जूथेश्वर सब हैं सखा लोग में। पांच प्रकार के सखा, सखा प्रिय सखा, प्रेष्ठ सखा, परम प्रेष्ठ सखा, प्रिय लड़ सखा, पांच प्रकार। इनमें कितने सब जूथ, लाखों कोटि जूथ है, किंतु देखो किसी को सेवा के लिए संघर्ष नहीं होता। अभी प्रधानमंत्री यहां आ जाए तो यहां के जितने कांग्रेसी हैं ना लड़ पड़ेंगे, मैं गले में आगे माला डालू, मैं एक गले में माला डालू, संघर्ष छिड़ जाएगा। और वहां पर इतने सखा है जूथ के जूथ कोटि कोटि, कोई संघर्ष ही नहीं मालूम होगा। सबको समान रूप से सुयोग दे। तो इसलिए महात्मा कह रहे हैं, इसलिए महान उनका ऐश्वर्य है। जैसे भी वो ऐश्वर्य प्रकाश करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। और प्रत्येक गोपाल बालक ऐसा ही समझ रहे हैं कि आज इन समस्त सखाओं में मैं ही सबसे बड़ा भाग्यवान हूं, जो कृष्ण हमको अकेले ये सुयोग दे रहे हैं। आज मैं बड़ा था, कृष्ण मुझे इतना प्यार करते हैं, जो कृष्ण मुझे कह रहे हैं जैसे भैया हमारा पैर आज थक गया हूं, जरा पैर दबा दो या हमें विजन कर दो, पंखे से चल दो। इसलिए महात्मा शब्द का प्रयोग इस महान अर्थ में किया गया, अथवा प्रेम से भरकर व्याकुलता सभी लोग सेवा करने के लिए आएंगे तो संघर्ष की संभावना है, किंतु तल्लीला जे ईश्वर चेष्टा, इस चेष्टा, इस चेष्टा ने अर्थात चेष्टा इसकी नहीं, इस चेष्टा, चेष्टा माने जोग माया, जोग माया ने कृष्ण को भी और किसी को जानने नहीं दिया और सबके अनजान में ये काम अपने आप करा दिया। हम लोगों को अपनी चेष्टा जानबूझ करके करनी होती है, और कृष्ण की इच्छा चेष्टा जो जोग माया है वो भगवान को भी नहीं जानने थी, नहीं यदि भगवान को जना देगी तो भगवान का रसा स्वादन सत्य भाव का नहीं होगा, इसलिए भगवान को भी जानने नहीं दिया। वो अबुध बालक बनते हुए जैसे खेलते हैं बस वैसे ही खेलते रहे, आस्वादन करते रहे। कोई कोई हत पापना, हत पापमा, हत पापमा कहते हैं जिनका पाप हो गया। यहां पर पाप मत समझना, सखाओं में पाप की कोई संभावना नहीं, यहां पर सेवा विरोधी जो भावना है उसी को पाप कहा गया। सेवा के विरोध जो भावना है, ऐसी कोई, ऐसा कोई भी नहीं था जिनमें कृष्ण की सेवा करने की प्रेम से भावना नहीं, बल्कि स्नेह से। स्नेह माने क्या?
प्रेम से भी आगे बढ़ते हैं।
स्नेह माने अत्यंत स्निग्ध, आंखें तरल है, हृदय तरल है, अंग तरल है, ऐसा तरल भाव होकर के जो सेवा करता है। हम लोग कभी कभी प्रेम से सेवा कर सकते हैं, किंतु सबसे मैंने कभी कभी कर्तव्य ज्ञान आता है, अधिकांश कर्तव्य ज्ञान, और कभी कभी कुछ भाव सेवा की होती है, किंतु ऐसा स्नेह पूर्वक यदि हो ना तो भगवान की लाख इच्छा हो जाएगी जाने खुद जाकर के ग्रहण कर, भगवान की इच्छा हो जाएगी। कुछ लोग मयूर पुच्छ और पल्लवों से रचित जिसमें कुछ सुंदर सुंदर कुसुमित और सुगंधित पुष्प हैं लेकर के हाथों से भजन करने लग गए। मृदु मृदु, मृदु बीजन, मृदु मधु, मृदु मधुर मंद, तीन मंद मृदु मधु, जोर से नहीं, जितनी आवश्यकता है बस उतने ही मधुर हाथों के साथ, कोमल हाथों के साथ निकाल दे। पंखा का चला दो और बैठा दो किसी को खाने के लिए, पंखा बड़े रफ्तार के साथ में चले और उसमें यदि कंट्रोलर ना हो तो कोई बात ही नहीं, लेना का देना हो जाए। माता के विजन में, स्त्री के विजन में, बहन के विजन में, जिसकी बहन होगी ना, जब अपने बहन के यहाँ कभी कोई गया होगा तो बहन उस समय में आ करके खिलाती है अपने ससुराल में भैया को पंखे जला करके इतने प्रेम से चलाती होगी ना, उसकी याद से भाई लोग रो रहे, इसीलिए माया ऐसे हो जाएंगे ना निकलना बड़ा भारी दुष्कर है। भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है, माता का ये स्नेह भाव जो सेवा, स्नेह से युक्त जो सेवा है कहाँ मिलेगा विश्व में। कृष्ण राम कृष्ण दोनों रोते हैं उस ममता के लिए, तो पापमा माने भक्ति विरुद्ध रूप कृष्ण सेवा ये ग्रहण किया गया। किसी में भी ऐसी भावना नहीं है कृष्ण सेवा के विपरीत या कर्तव्य बोध नहीं है। वहां पर क्या है, सब प्रेममयी सब सेवा है, प्रेम से आकृष्ट होकर के स्नेह माने प्रेम से भी और ऊपर प्रणय और स्नेह अनुराग से वो सेवा कर रहे हैं। अथवा अपहत पापमा मने और एक अर्थ लिया, अर्थात भगवान की भांति जिनका लीला चरित्र सुनने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, इनकी भी लीला कथाओं को सुनने से जीव मात्र ही अपहत पापमा हो जाता है, उनके अखिल पाप इत्यादि सब कुछ विमुखता सब कुछ दूर हो जाती है ऐसे भक्तों का जीवन चरित्र सुनने से। ऐसे ही लीला चरित्र का वर्णन किया है जिसे कि सुन करके सखरस वालों का जिसका स्वरूप है उनको लोभ उत्पन्न हो जाए। अन्य च तद अनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मन गायन्ति स्म महाराज स्नेह विक्लव धियस सनै। अन्य दूसरे कुछ सखा कितना बज गया है, साढ़े बज गया है, छह बजे नहीं है तो बंद कर दें फिर रात हो जाएगी तुमने मुझे। ये और भी मधुर है और मधुर से मधुर चलता आ रहा है। मैया को लाएंगे, पिताजी नंद बाबा को लाएंगे, वसुदेव जी से तुलना करेंगे, दशरथ महाराज जी और कौशल्या से तुलना करेंगे, अब तुलना करके अहो भागा यशोदा च महाभागा ये सब लाएंगे। अभी तो ये सखरस में डूब रहे हैं सनातन गोस्वामी, सखाओं को देखा कहाँ से इन्होंने, कैसे देखा, कृष्ण को खोज रही है, लवंग मंजरी है ना, खोज रही है और खोजते देखा जो गोचारण कर रहे हैं, तो देखते देखते उनको बुलाना भूल गई कृष्ण को, और ये सखर रस का भाव देख करके बस उसी में तन्मय हो गए। कुछ समय के लिए ऐसा जो मैं भी सखा होती और सखा होकर के कृष्ण की ऐसे ही सेवा करती निकट से। अभी तो लज्जा के मारे हम निकट नहीं जा पाए, इसी का इसमें वर्णन किया गया। अन्य तद अनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह विक्लन्न धियः सनै। स्नेह क्लिन्न क्लिन माने होता है ये कीचड़ होता है ना, कीचड़ में जो लटपट हो जाता है चलते हुए है? चलते चलते हम लोग जा रहे थे मेदिनीपुर में, हम लोगों का दल था 20-25 से भी अधिक गृहस्थ भक्त सब लोग, ये लोग भी थे शुभानंद भी निकुंज और सब, हम लोगों का मन प्रचार ही वैसा, जहाँ जाते थे वो लाल कपड़ों का देख करके और मंडली देख करके अपने आप प्रचार हो जाता। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक नदी थी वो प्राय आध माइल से भी एक माइल चौड़ी और उसमें ज्वार भाटा आता है, तो उसमें कभी पानी ऊपर चला जाएगा तो एकदम किनारे के किनारे भर जाएगा और यदि पानी नीचे चला जाएगा तो एकदम नीचे के तल में वो पानी चला जाएगा, चारों तरफ ऊपर से नीचे तक कीचड़। तो हम लोग जा रहे थे तो वो गार भाटा हो गया था माने नीचे ही चला गया, तो हम लोग पार करके किसी प्रकार से उस पार में पहुंचे तो लोगों ने हम पर बड़ा प्रेम दिखाया, कहा जैसे महाराज जी को हम लोग गोदी में उठा करके ले चले। हमने कहा भैया हम तुम्हारे समान ही हैं, हम पैदल चले जाएंगे, कोई भी अर्ज नहीं, किन माना ही नहीं। तो निकुंज ने कहा जैसे हम किसी को पकड़ने हम अकेले ले जाएंगे अकेले, तो वो हमको लिया और इतने में पानी थोड़ा सा बहने लगा, धीरे धीरे ऊपर हो रहा था और कीचड़ भी एकदम यहाँ तक कीचड़, बस ऐसा फंस गया लेकर के हमको भी गिरा दिया और अपने भी गिर गया और सब दोनों आदमी सबका तो बच गया, सब लोगों का कोई भी कपड़ा पड़ा नहीं खराब हुआ और हमारा ऊपर से नीचे सब कुछ खराब हो गया। ऐसे कीचड़ में लथपथ को क्लिंग कहते हैं ना। बदोनुर गायंती स्म महाराज स्नेह क्लिंग धिया, स्नेह का जो कीचड़ हुआ उसमें उसका मति जो है धिया बुद्धि स्नेह रूपी कीचड़ में एकदम पक गई। किनकी? महात्मा सखाओं की, जिसको कृष्ण जिसकी सेवा ले रहे हैं, इतने प्रेम के साथ में इस सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। आज सखाओं सखाओं का कितना सौभाग्य है। अन्य कुछ दूसरे थे मनोज्ञानी, अत्यंत मन के रुचिकर, कृष्ण को रुचिर लगने वाला, मनोहर लगने वाला, नाने वाले गायंती गायन करने लगे। क्या गायन करने लग गए? कृष्ण के बाल चरित्र को कोई गायन कर रहा है सुंदर सुंदर। अपने आप आंसू कवि जानते हैं किसको कहते हैं? आंसू कवि मने क्या, साथ ही साथ में कविता निकलती चली जा रही है, जो वाणी कर रहे हैं। जैसे महिलाएं किसी के मरने पर या कुछ होने पर तुकबंदी करती हुई गाती हुई प्रेम से रो रही हैं कि गा रही हैं, तुकबंदी करती हुई कविता छंदमय। तुकबंदी नहीं जानते हैं? सियाराम मैं सब जग जान करो प्रणाम जो युग पानी पानी, और वो हुआ ना ये तुकबंदी हो गई। ऐसे ऐसे तुकबंदी करती हुई मिला मिला करके करती हुई चली जा रही छंदोमय बद्ध से। सखा लोग भी कम है, कभी महेंद्र इत्यादि की सृजन करने में।